जिना जो गिंदरपाल का अफसाना तीसरा शख्स आपके पेश खिदमत है। प्रोफेसर दौत अपनी लाइब्रेरी बैठा सोच ही रहा था कि यह खातून कौन हो सकती है कि उसे दरवाजे से दाखिल होती हुई एक बड़ी मानूस शक्ल दिखाई दी। रडवे प्रोफेसर ने उसे अपनी दो आंखों से देखने के लिए ऐनक उतार ली। मानी पे उठकर बेअख्तियार उसकी तरफ पढ़ा। जवानी 20-22 बरस के बाद अचानक यू लौट कर सामने आ जाए तो अधेड़ उम्र हो चुकने के बावजूद जवान नजर आती है, क्या है तो जवानी ही। मानी भी प्रोफेसर की नौ उम्र की एक पुरानी गैर तकमील शुदा ख्वाहिश थी जो माहो साल की ओट से बरामद हुई तो प्रोफेसर को जू की तू लगी। प्रोफेसर दौत ने अपनी जिंदगी में एक ही मोहब्बत की और एक ही शादी। मानी से मोहब्बत की तो वो शादी करके अपने शोहर के साथ इंग्लैंड चली गई और अपनी बीवी से शादी की तो चंद साल में ही वो किसी आम ख्वाहिश की तरह मर गई। अरे दोस्त, तुम तो अपना भूत बनकर रह गए हो, क्या बूढ़ा होने की एक्सरसाइज किया करते हो। प्रोफेसर दोस्त मुस्कुराने लगे। हाँ मानी, इंतजार बुढ़ापे की एक्सरसाइज ही तो है, आओ। वो आगे बढ़कर सोफे में बैठ गई। किसका इंतजार, मेरा? ओ गुड ओल्ड बॉय, मैंने तुम्हें इसीलिए अपनी आमद का ना लिखा कि मुझे यूं अचानक अपने पास पाकर तुम बड़े खुशगवार हैलत में मुब्तला हो जाओगे। तुम्हें बीवी कहाँ है और बच्चे? इसी अस्ना में नौकर ने आकर इत्तला की कि उसने मादाम का सामान रखवा दिया है, जाओ चाय तैयार करके ले आओ। प्रोफेसर अपने नौकर से नजर हटाकर फिर मानी की तरफ देखने लगा। मेरा 15 बच्चे हैं मानी। अरे बाप रे, आई एम सॉरी, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? वो प्रोफेसर ने अपने सामने किताबों के शेल्फ की तरफ इशारा किया। मानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब मर्द सोच सोच कर माँ और बाप दोनों का रोल खुद ही अदा करना चाहे तो बच्चों के बजाय किताबें पैदा होती हैं। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या? हाँ, मैंने ये 20 बरस तन्हा गुजारे हैं, घर में बातें करने के लिए कोई है नहीं और यूनिवर्सिटी क्लास में भी हुजूम से ही बातें करता हूं, यानी वो भी एक तरह अपने आप से बातें करना है। तुम पागल हो? मानी बेचैन होकर अपने जेब में हाथ डालो सिगरेट निकालकर सुलगा लिया। तुम सिगरेट भी पीने लगी हो मानी? जहर भी पीने लगी हूं। उसने 2-3 तेज तेज कश खींचे। एक मर गई थी मोरख, एक मर गई थी मोरख तो क्या दूसरी कर लेते, वो भी ना रहती तो तीसरी चौथी। अपने देश की करोड़ों औरतों में से क्या तुम दो चार के भी अहल ना थे? तुमने खुदकशी की है दोत, नाहक अपनी भली चंगी जिंदगी तल्फ करके रख दी है। वो तो बाहर सूरत तल्फ होना थी। वो दोनों चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर उनसे रहा ना गया और वो तेज तेज अपने जहन के गार में जा उतरे और घटा टोप अंधेरे में दौड़ दौड़ कर अपने मुश्तरक माजी में पहुंच कर एक दूसरे को बेख्तियार बाजू में जकड़ लिया। और कुछ देर बाद जब वो इन गारों से बाहर आए तो बड़े मुतमईन नजर आते थे, जैसे दूल्हा दुल्हन सुहागरात के बाद सुबह आंखें खुलने पर। लो चाय आ गई, प्रोफेसर दौत ने चाय नौकर को चले जाने का इशारा करके मानी से कहा, बनाओ। तुम एक ऐसी औरत की जरूरत है जो जो तुम्हारी तरह हो, प्रोफेसर ने कहा, मगर क्या फायदा, वो औरत भी तुम्हारी तरह मुझे छोड़कर इंग्लैंड चली जाएगी। फिर दो तीन बात कहूं, मानी ने अनजाने में चाय में शक्कर ज्यादा घोल दी, तुम भी हमारे साथ इंग्लैंड चले आओ, हमारे साथ रहना। हमारे साथ यानी मानी और शोहर के साथ? वो दोनों हम हैं, प्रोफेसर सोच लगा, और मानी और मैं, हम और तुम हैं, क्या अमानी इसलिए इतना लंबा सफर तय करके आई है कि मेरे जहन से अपना अक्स भी निकाल कर ले जाए? दो पिछले कई दिन से मैं तुम्हारे ख्याल में डूबी डूबी रही, न जाने क्यों। तुम हमेशा मेरे जहन में रही हो मानी, और मुझे लग रहा है कि स्वतंत्र निस्तान से नहीं, मेरे जहन से निकल आई हो। दोस्त ने गरम गरम चाय मुंह से लगाए और होठों में जलन महसूस करके कहने लगा, मुझे डर है कि अब मैं खाली जहन हो जाऊंगा। उसने चाय की प्याली मेज पर रखकर सिगार सुलगा ली। मानी, मुझे एक अजीब सा ख्याल आ रहा है, तुम ही मेरी सारी कागजी औलाद की माँ हो और मैं उसका बाप। जैसे शौहर और बीवी के रिश्ते से बच्चे पैदा होते हैं, वैसे ही अफलातून ये रिश्ते किताबों की पैदाइश के बाइस है। अगर तुम मुझे खाली जहन करके चली गई मानी, तो मैं अपने इस फिक्री इख्तलास से भी महरूम हो जाऊंगा। यू यू वो हंसकर गोया दोस्त के बदन में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर रही थी ताकि उसे कर्ब का एहसास ना रहे। अरे मैं कैसी माँ हूं कि अपने बच्चों को सारी उम्र एक नजर भी नहीं देखा। प्रोफेसर दूध उठकर बुक शेल्फ के करीब आ गया और अपनी सब किताबों को उठाकर मानी के पैरों में सोफे पर लटा दिया। मानी ने चंद एक को उठाकर गोद में डाल लिया और जो सबसे छोटी थी उसे हाथों में लेकर कहा, उसके नौजायदा चेहरे पे आके गाड़ ली और बकिया जो बड़ी बड़ी थी सोफे पर अपनी माँ की तरफ सर उठाए पड़ी रही। इन सब की तरफ पिताना शफ़क़त से देखते हुए बच्चों के बाप की नजर से होके की पुरस्कार गुड़गुड़ सुनाई देती रही। एकाएक ही मानी बेख्तियार हंस दी, तुम्हारी हर किताब सिटल बीबी है माई डियर दोस्त। हुक्के की पुरस्कार गुड़गुड़ बंद हो गई। आई एम सॉरी दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि जिंदा बच्चे ज़हनी मुलाकातों से पैदा नहीं होते। प्रोफेसर दोस्त ने बौखलाकर सिगार का एक लंबा कश लिया और मुंह से धुआं खारिज करने के बाद भी बाहर की तरफ सांस छोड़ता रहा, गोया बनस्तूर धुआं बाहर निकाल रहा हो। जानते हो डॉर्लिंग, मेरी तुम्हारी शादी क्यों ना हो पाई, इसलिए कि मैं तुम्हारे पास बैठी होती, लेकिन तुम मुझे देखने के लिए तुम अपने जहन में देखने लगते। मैं बैठ बैठ कर तंग आ जाती कि अजब आशिक से पाला पड़ा है, इश्क मुझसे करता है पर मुतवज्जा मेरे तस्वुर की तरफ रहता है। तुमने मेरा एक तस्वीर बना रखा, तुमने मेरा एक तस्वुर बना रखा था, अपनी मर्जी का तस्वुर, और अपनी इस पसंद को भी साथ पर महमूल कर लिया था। दरअसल तुम अपनी जात से, अपने तखयल से, अपने आप से प्यार करते थे, मुझसे नहीं। मानी ने गोया अपनी बात को डुबोने के लिए चाय की गरम गरम शक्कर आमेज तक जरे हलक में गिरा लिए। जब मेरी शादी हुई तो मैं चाहती थी कि तुम दीवाने हो जाओ, पर तुम टस से मस ना हुए, और फिर मैं इंग्लैंड जाने लगी तो तुम मेरे शौहर से इतनी मोहब्बत से गले मिले, गोया वो मुझे तुमसे छीन कर तुम पर एहसान कर रहा हो। तुम जरा भी बेचैन ना हुए और मैंने बेचैन होकर सोचा कि तुमसे कभी ना मिलूंगी, तुमसे कोई वास्ता ना रखूंगी। अपने शोहर की शक्ल खसलत के बच्चे जिन जिन कर उन्हें बड़ा करने में अपनी सारी उम्र सर्फ कर दूंगी। मगर मानी क्या क्या खुश्क थी, कुछ यूं जैसे अभी पानी से भर जाएंगी। मगर गुज़िश्ता साल से कई बार कई जगह तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों के सामने घूम घूम गई। एक बार तो किसी पार्क में एक आदमी का साया देखकर यही लगा कि तुम ही हो। मैं अपने बच्चों को भीड़ में छोड़कर उस साये की तरफ भागी और उस शख्स के कंधे को जा पकड़ा और मुझे शायद ऐसी वजह समझकर हंसने लगा। तू तुम्हारा जादू जाना वालों या मेरे सर पर चढ़ा रहता, शायद इसलिए कि मेरे मुतालिक लगातार सोच सोच कर तुमने इतने फासले पर भी मेरे वजूद को अपनी सायराना गिरफ्त में ले रख दिया था। आखिर मैंने फैसला कर लिया, तुम जहां भी हो मुझे तुमसे फौरन मिलना चाहिए। अगर मैं तुमसे ना मिली तो, उसने एक नया सिगरेट लबों में सेट कर लिया, तो ना जाने क्या हो जाएगा। उसने दिया सलाई जलाई تو آگ بے قراری سے نکلی جیسے فوراً بجھ جانا چاہتی ہو اور سگریٹ سلگا کر مسکرانے لگی. آؤ مانیجر باہر لانڈری بیٹھتے ہیں. وہ کمرے سے نکل کر باہر باغ میں چلے آئے اور سائے میں رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے. وہ اپنے آس پاس کے پودوں کی طرح اپنی اپنی جگہ متکمن تھے اور اگ اگ کر لہجہ لہجہ بڑے ہو رہے تھے اور ان کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنے آس پاس کے پودوں کی طرح اپنی اپنی جگہ پر متکمن تھے اور اگ اگ کر لہجہ لہجہ بڑے ہو رہے تھے اور ان کا جی چاہ رہا تھا کہ ان کی شاخیں بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے میں دس جائیں اور اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مل جائے. ان کا نچلا تھڑ دور دور سہی پر ان کے سر ایک دوسرے پر جھک جائے. میں سوچتی ہوں دو تم آدمی نہیں ہو, ویسا خیال ہو. دودھ کا اوپری تھڑ کسی مصنف کے رفتے سے رقم کیے ہوئے خمیدہ سے فجائر نشان کی مانند متحرک سے ایستدگی کا تاثر پیش کر رہا تھا اور اپنے خیال کو محسوس کر کے وجود پذیر ہوئے ہو. کاش تم اپنی کسی کتاب میں پیدا ہوتے اور ہم ایک دوسرے کی پہچان کی صحبت سے بچے رہتے, کیونکہ کتابیں میری دانش و خواہش میں نہیں آتی. کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں دوست کہ مجھے بھول جاؤ, اپنے ذہن میں میرے خیال کا گلا گھونٹ دو, تمہارے خیال کے گورکھ دھندے سے نجات پا کر میری مکتی ہو جائے گی. سادھو بدستور اپنا سگار پھونک رہا تھا اور اس کا وجود مانی کی طرف جھک جھک کر استحکام آئی یا خمیدگی میں منتقل ہو رہا تھا. کیا سوچ رہے ہو دوست؟ میں یہاں تمہارے خیال میں نہیں, یہاں اپنے جسم میں. ادھر دیکھو. دوست سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا. میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں مانی, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے ذہن میں جھانک رہا ہوں. میں تمہیں وہیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں, مگر ڈارلنگ اس وقت میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں. یہاں اپنے تصور سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھو, مجھے سمجھو سمجھو. دوست نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں جما دی. مانی اس کی نو عمر خواہش کا پیکر سراپا التجا. نہیں نانی, نہیں مانی, اب وہ نہیں رہی جو تھی. اس کے چہرے کی تشنا تازگی مرچا رہی ہے. تشنگی سے بدحواس ہو کر اپنا منہ بڑھاپے کے دامن میں چھپا لیا چاہتی ہے. اپنی محبوبہ میں اس تغیر کے شعور سے بیتاب ہو کر وقت نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لی. مانی دوڑ لی, مانی گویا ساری عمر مانی کو یاد کر کر کے اسے مانی تو یاد ہو پر مانی سے اپنی خواہش بھول چکی ہو. کہو ڈارلنگ, دوست کے ذہن میں بھونچال آ رہا تھا اور وہ سر و سامان کو تباہی سے بچا لینے کے لیے اپنا ذہن خالی کر رہا تھا. اپنی سب سوچوں کی گاٹ اٹھا کر باہر رکھ دی تھی اور یہ تصویر مانی کی تصویر, یہ تصویر بھی. مانی کہہ بھی چکو نا ڈارلنگ, تمہارے شوہر کا کیا حال ہے مانی؟ پروفیسر دوست نے یکسر خالی ذہن ہو کر پوچھا.